कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, ही तेज मुझ में हो प्रभु। पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो, पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू तेरी शुद्धता मुझ में हो, तेरा ही रूप सदा हो मुझ में प्रभु, तेरा ही रूप सदा हो मुझ में प्रभु, तू आशीष मुझको दे 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 प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इन दिनों हम न्यायों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा है कि किस प्रकार इसराइली परमेश्वर के विरोध में कार्य करते रहे और परमेश्वर ने अपने समय के अंतराल में न्यायियों को खड़ा किया और उन्हें अपने शत्रुओं से विजय दिलाई। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि इप्ता, जो कि एक अवैध संतान के रूप में गिना गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रयोग में लिया और उसके द्वारा से इसराइलियों को विजय दिलाई। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो इससे पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमें से हर एक से बोलते और बातचीत करते हैं, हमें नई नई बातों को सिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो ये वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए, हमारे हर एक प्रकार की जो भी बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, जीवन से निकालने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना है प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, प्रभु आप उन सब के साथ हो, विशेष करके उनके साथ जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो किसी न किसी रूप में अपने जीवन में तनाव का सामना कर रहे हैं। प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें, उनके रोग से, उनके हर एक परेशानियों से आप उन्हें मुक्ति दें। आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में वे आपको जानने पाए कि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आप उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अपने पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि इसराइल ने फिर पाप किया, अर्थात मूर्ति पूजा की, और परमेश्वर ने उन्हें पलिस्तियों तथा अमोनियों के अधीन कर दिया। 18 वर्ष कष्ट भोगने के बाद वे समाज से बहिष्कृत अर्थात निकाले हुए इप्ताह के पास गए, जो दुस्साहसियों का सरदार था, और उसकी शर्तों को मानकर उसे अपना न्याय स्वीकार किया। मेरे मित्रों, इप्ताह के बारे में एक बड़ी विचित्र बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि वह बिना सोचे समझे परमेश्वर से मन्नत मांगता है, परंतु उसे पूरा भी करता है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और न्यायियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, तब इप्ताह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और इप्ताह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब इप्ताह ने अमोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है। मेरे प्रियो, इससे आगे के पद व्यक्त करते हैं कि अमोनी कैसे वहां बसे। इप्ताह स्पष्ट वर्णन करता है कि वह देश वास्तव में इसराइल का है, क्योंकि उन्होंने उचित रूप से उस पर अधिकार किया था। अमोन इस प्रयास में थे कि इसराइल को उस देश से बाहर ही न कर दें, वरन उनका सर्वनाश कर दें। इसराइल देश में आज भी यही हो रहा है मेरे मित्रों, विशेष करके सन 1948 से जब इसराइल का राष्ट्र रूप में पुनर्गठन हुआ, तब से ही उनके वैरी उन्हें वहां से निकाल देने के प्रयास में हैं, वरन उन्हें नष्ट करके समुद्र में डाल देने के प्रयास में हैं। मैं इस भाग को नहीं पढ़ूंगा, परंतु आपके लिए यह बताना लाभकारी होगा कि इप्ता ने अमोनियों के राजा को स्पष्ट समझाया कि इसराइल द्वारा वहां बसना वैधानिक था, यह उनका अधिकार था। न्यायों के पुस्तक 11 अध्याय के 28 और 29 पद में लिखा है, तो भी अमोनियों के राजा ने इप्ता की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इप्ता में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला। मित्रों ध्यान दीजिए, अमोनियों के राजा ने इप्ता के पत्र का तिरस्कार किया, उसे उस पत्र का संदेश स्वीकार्य नहीं था, अतः इप्ता ने अमोनियों पर आक्रमण किया, परंतु बैरियों को देख उसका साहस टूट गया और उसने वह काम किया जो वह सामान्यतः करता नहीं था। कृपया यह न भूलें कि वह वर्षों निवासान में था, अर्थात बाहर था, और अब अचानक ही इसराइल का न्यायी बनकर प्रतिष्ठित हुआ है। अनापेक्षित उच्च पद प्राप्त करने पर मनुष्य अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। अपने इसी उत्साह में उसने दुस्साहसी शपथ खाई। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इप्ता को उतना प्रकाशन प्राप्त नहीं था जितना आज हमें प्राप्त है, और दूसरी बात, वह अन्य जाति पृष्ठभूमि के कारण आधा अन्य जाति भी था। वह परमेश्वर को जानता तो था, परंतु उचित रीति से नहीं जानता था। परमेश्वर को उसकी शपथ की आवश्यकता नहीं थी। आइए हम पढ़ते हैं न्यायियों 11 अध्याय के 30 और 31 पद में, और इप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निस्संदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेरे मित्रों, उसका कारण उचित था और परमेश्वर ने इप्ता को संपूर्ण आश्वासन दिया था कि वह विजयी होगा। उसे ऐसी शपथ खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने उसके शपथ के आधार पर उसे विजयी नहीं बनाया था। उसे ऊंचा उठाने में परमेश्वर का ही हाथ था। उसे यह बोध होना आवश्यक था कि परमेश्वर उसे यहाँ तक ले आया है तो निश्चय ही पार भी लाएगा। पद 19 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर समा गया, अर्थात उतर आया। उसे अपनी ओर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कहा, जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का भेंट ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब मान लें कि उसका कोई मित्र या पड़ोसी होता, तो उसे कोई अधिकार नहीं था कि उसे वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। मित्रों, हम न्यायियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ते हैं, जब इप्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती बेटी थी। उसको छोड़ उसके न तो कोई छोटा भाई था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। मेरे मित्रों, इप्ता ने परमेश्वर के लिए शपथ खाई थी और उसकी समझ के अनुसार वह उससे इनकार नहीं कर सकता था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उसने अपनी पुत्री को परमेश्वर की भेंट चढ़ाया? आइए हम इस स्थिति का निकट से निरीक्षण करें। इप्ता के इस शपथ के बारे में धर्मशास्त्र आगे कुछ नहीं कहता है कि वह गलत था या उसने सही किया। मित्रों, धर्मशास्त्र तो इसमें उसका कोई दोष नहीं देखता है, वरन सच तो यह है कि इब्रानियों का लेखक उसे विश्वास के नायकों की सूची में रखकर प्रतिष्ठित करता है। हम 11 अध्याय इब्रानियों उसके 32 पद में पढ़ते हैं, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन और इप्ताह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। यहाँ आप देख सकते हैं कि इप्ता, जिसे इप्ताह लिखा गया है, उत्तम पुरुषों में गिना गया है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 उसके 13 पद में परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तू हत्या मत करना। परमेश्वर ने बच्चों की बलि न चढ़ाने के विषय में व्यवस्था विवरण अध्याय 12 पद 31 में विशेष निर्देश दिया है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे ऐसा काम नहीं करवाऊंगा और तुम करना भी नहीं, क्योंकि यह अन्य जातियों की रीति है, वे ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को भी नर बलि से रोका था, वह तो केवल देखना चाहता था कि अब्राहम किस हद तक परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहेगा। अब्राहम किसी भी सीमा तक परमेश्वर की आज्ञा मानने में विश्वास योग्य ठहरा था। जहां तक अब्राहम का प्रश्न है, उसने तो छुरी उठा ली थी और अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया था, परंतु परमेश्वर उसे पुत्र की हत्या नहीं करने देगा। मेरे विचार में पद 31 की भाषा के अर्थ को सुधारने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कि वहाँ लिखा है, जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेरे मित्रों, मैं इसके अंतिम वाक्यांश की रचना में परिवर्तन करके पढ़ता हूँ, या मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, अर्थात इप्ता के कहने का अभिप्राय यह था कि वह दो में से एक काम करेगा, वह या तो होम बलि चढ़ाएगा या परमेश्वर को भेंट चढ़ाएगा। मित्रों, क्या उसने अपनी पुत्री को बलि किया? मेरे विचार में उसने उसे बलि नहीं चढ़ाया, उसने उसे आजीवन कुंवारी रहने के लिए पृथक कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। अतः हम देखते हैं कि इप्ता स्वयं ही एक अवैध संतान था और उसकी संतान में एकमात्र पुत्री ही उसके पास थी। वह तो चाहता था कि उसका विवाह करे और नाती पोतों का आनंद प्राप्त करे, परंतु उसकी पुत्री ही सबसे पहले उससे भेंट करने घर से बाहर निकली और उसने उसे परमेश्वर को अर्पित कर दिया। अब आप कहेंगे, क्या आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही हुआ था? तो सुनिए वह लड़की क्या कहती है। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो सो बात मेरे मुंह से निकली है, उसी के अनुसार मुझसे वर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी क्षत्रियों से तेरा पलटा लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वह बालिका कैसी आज्ञाकारी है। उसने कहा कि वह अपने पिता की शपथ के अधीन जो भी होगा उसे निभाएगी। तब हम न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 37 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि दो महीने तक मुझे छोड़े रह, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। मेरे मित्रों, वह भी यही समझी थी कि उसे आजीवन कुंवारी रहना है, न कि बलि चढ़ना, और अपने कुंवारेपन पर रोने चली गई। अब वह किसी की वधू नहीं बन सकती थी, उसका जीवन परमेश्वर को समर्पित होना था। तब हम आगे पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 38 से 40 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, जा। तब उसने उसे दो महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। दो महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इसराइलियों में यह रीति चली कि इसराइली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्ताह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। मेरे मित्रों, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इप्ताह की पुत्री ने विवाह नहीं किया, वह परमेश्वर को समर्पित हो गई। पद 40 में यश गाने का अर्थ है पर्व मनाना। इप्ताह की पुत्री को प्रतिवर्ष 4 दिन तक इसराइल की स्त्रियां विशेष रूप से स्मरण करती थी। वह पूर्ण रूप से प्रभु और उसकी सेवा में समर्पित की गई थी। कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उसे नर बलि करके चढ़ाया गया। इस विषय में वर्षों से विवाद होता आ रहा है। मुझसे भी बहुत पूछा जाता है, क्या इप्ताह ने अपने पुत्री की बलि चढ़ाई थी? जी नहीं, परंतु यह मुख्य बात नहीं है। परमेश्वर उसे नर बलि की अनुमति कभी नहीं देता, परंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इप्ताह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसकी शपथ पवित्र थी और उसने उसके साथ समझौता नहीं किया। यह निस्संदेह एक दुस्साहसी वचन था, परंतु यह व्यर्थ की घमंड नहीं थी, खोखली प्रतिज्ञा नहीं थी। शपथ खाने के विषय परमेश्वर का वचन कठोर एवं स्पष्ट निर्देश देता है। देखिए सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद, 4 पद और 5 पद में शपथ खाने के बारे में क्या लिखा है? बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। मेरे मित्रों, उचित तो यही है कि आप परमेश्वर के समक्ष उसी बात का प्रण करें जिसे आप पूरा कर पाए। मुझे चिंता तो उन लोगों की होती है जो आराधना के बाद वेदी पर जाते हैं और मोमबत्ती जलाकर स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, और कुछ लोग तो बार बार समर्पण करते हैं जब तक कि उसकी सुगंध स्वर्ग तक न पहुंच जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है अपने मुंह से बिना सोचे समझे कोई बात मत निकालो। यदि आपने परमेश्वर के समक्ष सोचे समझे बिना शपथ खाई है तो आप मूर्खता करते हैं। आपको पुनः विचार करना होगा। मेरे विश्वासी भाइयों, यदि आप समर्पण आराधना में उपस्थित होते हैं तो वेदी पर जाने की शीघ्रता न करें कि आप परमेश्वर को सब कुछ समर्पित न करने पाए। यदि आप दिल से न कहें तो इप्ताह अवैध संतान था। मेरे मित्रों, उसकी माता एक वेश्या थी। उसके पास एक सुंदर पुत्री थी जिसे वह चाहता था कि विवाह करे और नाती पोतों का आनंद ले, परंतु उसने अनजाने में उसे परमेश्वर को समर्पित कर दिया और अपना वचन निभाया। मेरे प्रियो, आज के विश्वासी शपथ खाने में और उन्हें तोड़ने में बदनाम है। मैंने इस पर तभी ध्यान दिया था जब मैं युवा विश्वासी था और मसीह संगति में आना आरंभ कर दिया था। मैंने एक युवा सम्मेलन में सहभागिता की जहां मैंने 18 युवाओं को आगे जाकर सेवा में अपना समर्पण किया। मैं तो आगे गया ही नहीं क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं उसे निभा पाऊंगा। क्या मैं आज आपको बता सकता हूं कि उस रात प्रभु की सेवा में समर्पित होने वाले एक भी पूरे समय की सेवा में नहीं जा पाए? क्या आपने परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा की है? यदि आपने की है तो वह चाहता है कि आप उसे पूरी करें। दूसरे तिमुथियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 11 और 13 पद में पौलुस कहता है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। मित्रों, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है और हम भी अपने वचन के पक्के हों। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। मित्रों, वह कैसा महान है और हम कैसे मूर्ख हैं। इप्ताह की यह शपथ हमारे लिए एक शिक्षा है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम में से कई भाई बहन जाने अनजाने में परमेश्वर के सम्मुख शपथ खाते हैं। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उतावले होकर हम शपथ खाते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि जो हम शपथ लेते हैं हम उसे पूरा करें। इसलिए हमें यह भी कहा गया है कि हम शपथ न लें। मेरे प्रियो, यहाँ पर इप्ताह ने गलती से ही इस शपथ को लिया और उसने उसे पूरा किया, क्योंकि वह परमेश्वर की गंभीरता को जानता था। क्या आज आप शपथ ले रहे हैं? क्या आज आपने शपथ लेकर या मन्नत मानकर उसे पूरा किया है? या अपने कार्यों के पूर्ण होने के बाद आप परमेश्वर को भूल गए हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे शपथ नहीं लेकिन उसके पास आए, अपनी ईमानदारी पूर्ण जीवन के द्वारा उसको आदर दें, क्योंकि वह चाहता है कि वह आपको आशीष दे। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को बलि कर, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति नर बलि उसे चढ़ाए, परंतु यह उसके लिए एक परीक्षा थी ताकि वह उसे विश्वास में और दृढ़ कर सके। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि अब्राहम आज हम सब के लिए विश्वास का पिता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में भी उस विश्वास को देखना चाहता है, उस आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। इप्ता, जो कि एक अवैध संतान था, जो एक वेश्या का बेटा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को भी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रयोग में लिया। मेरे मित्र, आज मेरे और आपके लिए एक चुनौती है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वह हमारे दिल, हमारे हृदय को देखता है, हमारे मनों को जांचता है, और वह चाहता है कि हम उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दें। जब हम सच्चे मन से उसको समर्पित करते हैं तो निश्चय जाने कि वह हमें आशीषें देता है, हमारे जीवन को उपयोग में लेता है। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग में ले? हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बहुत कर्ज में डूबा हूं, मैं बहुत समस्याओं में फंसा हुआ हूं, मुझे कौन उपयोग में लेगा? लेकिन परमेश्वर आपको देखता है, वह आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। मेरे मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन से आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। मुझे आशा है कि आप आगे के कार्यक्रम को अवश्य सुनेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, और फिर से परमेश्वर के वचन की संगति में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
राजाओं का राजा है।